नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर 20 नवंबर को जारी अपने आदेश पर रोक लगाई। एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने के आदेश। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं। और प्रदेश में नए साल की शुरुआत में तेज सर्दी और हल्की बारिश होने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर 20 नवंबर को जारी अपने आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एजी मसीही की अवकाश पीठ ने अरावली की परिभाषा के संबंध में जांच किए जाने वाले मुद्दों के परीक्षण के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पहले से मंजूर परिभाषाओं पर स्पष्टीकरण जरूरी है और 20 नवंबर को जारी शीर्ष न्यायालय के निर्देशों पर फिलहाल रोक रहेगी। न्यायालय ने इस मुद्दे पर केंद्र तथा राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा से जुड़ी चिंताओं पर स्वतः संज्ञान लिया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 24 दिसंबर को राज्यों को अरावली में किसी भी नई खनन लीज देने पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित अपने ही आदेश पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए गठित नई समिति का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरकार अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए उनके मंत्रालय से मांगी गई हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फिलहाल नए खनन पट्टों के साथ साथ मौजूदा पट्टों के नवीनीकरण पर भी पूर्ण प्रतिबंध लागू है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अरावली पर्वत श्रृंखला के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक नई समिति गठित करने के निर्णय का स्वागत किया है। रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं से जुड़े इन प्रस्तावों के लिए आवश्यक स्वीकृति प्रदान की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना के तोपखाना रेजिमेंटों के लिए लाइटर म्यूनिशन सिस्टम, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लो लेवल लाइट वेट रडार, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट गोला बारूद और इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम एमके सेकंड सहित विभिन्न रक्षा प्रणालियों की खरीद की मंजूरी दी गई है। लॉयटर म्यूनिशन का उपयोग सामरिक लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए किया जाएगा, जबकि लो लेवल लाइटवेट रडार छोटे आकार के कम ऊंचाई पर उड़ने वाले मानव रहित विमानों का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम होंगे। भारतीय वायुसेना के लिए हवाई क्षेत्र में मौजूद सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए स्वचालित टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम एओएन की खरीद को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने मन की बात कार्यक्रम में रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुद्दा उठाने पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि एंटीबायोटिक्स का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर और डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक सेवन नहीं किया जाना चाहिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत अधिकांश राज्यों को पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में 17,000 करोड़ रुपए अधिक आवंटित होने की संभावना है। इस अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम से राज्यों को समग्र धन वितरण में सुधार होगा। रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत जी रामजी अधिनियम का उद्देश्य परिवर्तनकारी पद्धतियों और रणनीतियों को एकीकृत करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धी परियोजनाओं की पहचान, उत्पादक संपत्ति निर्माण, अधिक आय सृजन और एक कुशल निगरानी तंत्र से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। भारतीय जनता पार्टी ने विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार मामले में खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा को अनुशासनहीनता के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। आज जयपुर में प्रदेश कार्यालय में ओंकार सिंह लखावत की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने की बात कही है। आज जयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 61वें प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, एबीवीपी के संस्कार और अनुशासन एक समृद्ध राष्ट्र की नींव है। श्री शर्मा ने एबीवीपी को देश हित में समर्पित बताते हुए युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और 4 लाख सरकारी नौकरियों के संकल्प के तहत नियुक्तियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित किया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जो राष्ट्र निर्माण की भावना जन्म लेती है, वही आगे चलकर धरातल को साकार करती है। छात्र शक्ति, राष्ट्र, युवा, महिला, मजदूर, उन चारों की दृष्टि रखते हुए अगर वो हमारे मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा। इसे लेकर के चल रहे राजस्थान के युवाओं को मैंने भरोसा दिलाया था कि 5 साल में हम सरकारी 4 लाख नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में देंगे। 92,000 हमने दे दी, 10,000 अगले महीने पुलिस विभाग में दे रहे हैं और 20,000 बिल्कुल नियुक्ति पत्र देने वाले हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में अपने निवास पर जन सुनवाई की। उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं प्रमुखता से शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में कल से अमृता हाट मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित ये मेला 3 जनवरी तक चलेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
अमृता हाट बाजार में विभिन्न जिलों के 100 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से 50 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। अमृता हाट मेले में राज्य के विभिन्न जिलों के प्रसिद्ध हस्त निर्मित उत्पादों जैसे मिट्टी के बर्तन, ऊनी पटु, टेरिकोटा, मीनाकारी, कशीदाकारी का सामान और कैर सांगरी कुमठिया जैसी खाने पीने की शुद्ध एवं गुणवत्ता वाली वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से निर्मित उत्पादों के विपणन को बढ़ावा मिलेगा। अमृता हाट मेला 3 जनवरी तक चलेगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
सिरोही जिले के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू में आज से 3 दिवसीय शरद महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। महोत्सव की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई, जिसमें देश भर से आए कलाकारों ने राजस्थानी लोक संस्कृति की अनूठी छटा बिखेरी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
माउंट आबू में आज से 3 दिवसीय शरद महोत्सव का शुभारंभ हुआ। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग व नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में यह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव की शुरुआत आज शोभा यात्रा के साथ हुई। इस शोभा यात्रा में देश भर से आए कलाकारों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव को लेकर यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों में भारी उत्साह बना हुआ है। देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के मौसम का आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
प्रदेश में नए साल की शुरुआत तेज सर्दी और हल्की बारिश से होने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी कुछ दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे जनवरी महीने के शुरुआती दिनों में जोधपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में मावठ का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बादल भी छाए रहेंगे।
31 दिसंबर और 1 जनवरी को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश, बूंदाबांदी और मावठ होने की संभावना है। इस सिस्टम के 2 जनवरी से गुजर जाने के बाद एक बार फिर से कुछ इलाकों में घना कोहरा भी गर्ज होने की संभावना है।
कोहरे और ठंड के प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग की ओर से किसानों को फसलों में हल्की सिंचाई करने और मेड़ों पर धुआं करने की सलाह दी गई है। वहीं पशु चिकित्सकों की ओर से पशुओं को हर हफ्ते अजवाइन, गिलोय और तुलसी के पत्ते देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शतरंज के प्रति उनके समर्पण की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान CDTI जयपुर में आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल फॉरेंसिक्स जैसी सुरक्षा चुनौतियों के लिए तकनीकी समाधान खोजना है। संस्थान के निदेशक डॉ. अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि देशभर के युवा टेक माइंड्स और साइबर विशेषज्ञ पुलिसिंग को आधुनिक बनाने के लिए नवाचारों पर मंथन कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि NCRB के उप निदेशक प्रसून गुप्ता ने कानून को लागू करने में डेटा एनालिटिक्स की महत्ता पर जोर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा पर 20 नवंबर को जारी अपने आदेश पर रोक लगाई। एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करने के आदेश। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं। और प्रदेश में नए साल की शुरुआत में तेज सर्दी और हल्की बारिश होने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।